ध्रुवचरित्र रचयिता नरोत्तम दास, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता तुलसी, जाति विलास के रचयिता देव। किस रचना के छंदों को अजायब घर कहा जा सकता है? पृथ्वीराज रासो। कई चिंतन एवं कुलधाराओं का योगदान मिलता है भारतीय युगीन काव्यधारा में। नित प्रति पुण्यो रहे आनन ओप अजास में अलंकार है, अतिशयोक्ति, अर्धकथानक, आत्मकथा। इनकी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की? घनानंद। सीख लीनो मिन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठाकुर। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। नयन नचाई कहें मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पद्माकर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सरहपा को। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बिसल देव रासो में किस काव्य शैली का प्रयोग किया गया है? गेय शैली। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक राहुल सांकृत्यायन। पद्मावत एक त्रासदी। भक्ति काल किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है? तुलसीदास। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास से मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? मैथिली शरण गुप्त। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा। बरवय नायिका भेद की रचनाकार रहीम। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा ब्रज। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? अष्टछाप धारा। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। कड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती में किस भावना के रूप रेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना। संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन उसे शुद्ध शब्द पूजनीय गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु। अभिन्न शब्द का सुंदर विच्छेद अधन भिन्न। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रोला। अवधि का निजी छंद है बरवय। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं निबंधकार के रूप में। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। नासिके तो व्याख्यान के लेखक शदल मिश्र। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतेंदु ने अपना बलियां वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास। भारतेंदु युगीन युग की केंद्रीय विधा नाटक। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक बालकृष्ण भट्ट। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख पत्र किस पत्र को कहा जाता है? हिंदी प्रदीप। संयोगिता स्वयंवर नाटक। ब्राह्मण के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रजभाषा में रचना। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहर। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक रामविलास शर्मा। श्री लाल शुक्ल की रचना राग दरबारी। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ। कनक कनकते सहगुनी मादक तो अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द का चयन करें परिपार्श्विक। कन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ध्वनि। संविधान के अनुच्छेद 391 किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं? सरिता। कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? विजय देव नारायण शाही। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती। नए इलाके किसकी काव्य कृति है? अरुण कमल। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यास है? कार है, राय मासूम रजा। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक उदय प्रकाश। निषाद बांसुरी की रचना विधा है? ललित निबंध। देहाती दुनिया के रचनाकार बलभद्र दीक्षित पढ़ीस। गेहूँ और गुलाब की रचना विधा आवारा मसीहा। किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? शरत चंद। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? रावण संगत्यान। आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा। हिंदी में शिकार साहित्य की अप्रतिम लेखक श्री राम शर्मा। निम्नलिखित में से तार सप्तम में कौन कभी शामिल नहीं था? रामधारी सिंह दिनकर। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा यात्रावृत्त। चारू चंद्रलेख उपन्यासकार अजय विश्व द्विवेदी। गली आगे मूर्ति है के लेखक शिव प्रसाद सिंह। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक रचयिता राम कुमार वर्मा। कुआं नौ नदी कविता संग्रह के कवि सर्वश्रद्धयाल सक्सेना। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर सहाय। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती। किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नागार्जुन। मगध कविता संग्रह के रचयिता रघुवीर सहाय। कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? सांप्रदायिकता। नेताजी कहन के लेखक मनोहर श्याम जोशी। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है 16। उपन्यासों में प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान। अनंत का संधि विच्छेद होगा अनधन अंत। बाल्टी कैसा शब्द है? देशज। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक भगवती चरण वर्मा। इंदुवती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी। कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। हानि लाभ में कौन सा समास है? नौ नौ मन तिल होगा नदर आधा नाचेगी, इसका अर्थ असंभव काल। निम्नलिखित में से लोगों को चुनिए। अजल गगरी छलकत जाए। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी। भूल गलती कविता के कवि त्रिलोचन। प्रति परिकथा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। बकरी नाटक रचयिता सर्वश्रद्धयाल सक्सेना। संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है? दिनकर। भाषा और समाज के लेखक राम विलास शर्मा। रामचंद्र वर्मा कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी। नहुष नाटक के नाटककार गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास। लोकायतन के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत। आंसू मुक्त काव्य संकलन। निराला के अंतिम कविता पत्तोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। कला और गुणा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकी नंदन खत्री। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था बम्बई से। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था सूर्य वतन। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा। आँख के अंधे गांठ के पूरे यानी धनी परंतु मूर्ख। गागर में सागर भरना विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। चोर के पैर नहीं होते पापी का मन अस्थिर होता है। पेट भर के मन मोदक से ऊब केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। इन प्रश्नों में से एक वाक्य दिया गया जिसमें से त्रुटि है, इसके नीचे चार विकल्प दिए गए, इसमें सही वाक्य से सही वाक्य चुनिए। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। हम बचपन से वहाँ जाता रहा, हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। हेम नरेश को पुस्तक दिया, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो चार भागों में विभाजित है। प्रत्येक प्रश्न को वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसमें किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है तो उस वाक्य किसी एक भाग में होगा, उस भाग का अपना उत्तर केवल नीचे दिए गए 1, 2, 3, 4 में ही होगा। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे। तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्रों का हार्दिक दुख होगा। हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर है। आकाश, अंबर, वस्त्र, किरण, किरण, मधु, दूध, शहद, शराब, दूध, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य, इंद्र, सजा, बल, शक्ति, सेना, सजा, दात, पूज्य, पिता, मोती, मोती। इन प्रश्नों में लोकोक्तियों को सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। धोई जो 100 बार तो काजर होए न सेत। ज्यों ज्यों भीजे काम रीत्यों त्यों भारी होए। शेर के मुख में हाथ डालना, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि वीर रस। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। प्रयुक्त पंक्तियों में रस, श्रृंगार, रस। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं, श्रृंगार। सोहत कर नवनीत लिए, घुटवन चलत रेणु तन मंडित, दुध मुख दुधि लेप किए। उपयुक्त पंक्तियों में रस है वात्सल्य। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपयुक्त पंक्तियों में रस, अलंकार, अनुप्रास। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। मुखरूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार, रूपक। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा में इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है। मातृ अर्धसम जाति का छंद है दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। भगवत गीता का संधि विच्छेद है भगवत धन गीता। मनोरम का संधि विच्छेद मनः धन रम। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहें, लाख टका है मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ वह है संज्ञा। यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु। बिहारी में से किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। भक्तिकाल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन कवि है? तुलसीदास। हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। नमक का दुर्गा कहानी के लेखक प्रेमचंद। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है विषय निरूपण। श्रृंगारी रस का स्थायी भाव रति, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान सामाजिक है। सूरदास कृष्ण काल की कवियाँ भक्ति काल, योगी हरि जी का पूर्ण नाम था श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मकता की। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम पद्मावत। स्मृति की रेखाएं की रचनाकार महादेवी वर्मा। आचार्य महेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने लिखित किस पत्रिका का संपादक सरस्वती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि। नीचे दिए गणदांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अध्यांश। सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहाँ हम हानि के होने की पहले ही हानि के कारण की वंदन करने लगते हैं, वहाँ हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसके स्थायी दशा की आशंका है। इन वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है जिससे विघ्न बाधाओं से जान बच सके। आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी के आश्रम में से आलम्बन बना देती है। सब स्फुट अंशों के संचारी भाव तथा अनुभव को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं तो यह आश्रय से संक्रमित आलम्बन का उदाहरण बन जाता है। संतों देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसीलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भाविक सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास्य बना देती है। दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है। इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य तुलसी का शील सर्जन प्रयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। तुलसी की दुष्ट वंदना। देवताओं महापुरुष सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक की जाएगी क्योंकि महाकवि तुलसीदास उदार चेता थे। जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को सरस बनाता है। अगला। भूषण महाराज ने विषय विशेषतया नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। शिवाजी और छत्रसाल को महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुर देश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण साकार दिखाया। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। ऐसी सेना ने इन महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने अधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज छोड़ा। भूषण ग्रंथावली। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। उनके आश्रदाता का राजा का नाम शिवाजी। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों का नाम है शिवावावनी शिवराज भूषण। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है भूषण का काव्य नायक चयन। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगल शासकों का सामना किया उस समय उसके पास थे 5 सवार 25 पैदल। भूषण का प्रिय काव्य रस था वीर। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बाद। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है झांसी की रानी। इस कविता की कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में प्रयोग किया गया रस वीर रस। कवयित्री की अधिकांश रचनाएँ देशभक्तिपूर्ण हैं। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का अर्थ है पुरुषत्ववान। निम्नलिखित प्रश्नों प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्दों का पर्यायवाची हो। अंतरिक्ष अनंत गगन अंबुज कमल शंख खल दुष्ट धोखेबाज तृण तिनका घास क्षुद्र नीच अधम उग्र प्रचंड क्रोधी बटोही पथिक राहगीर वीरद यश ख्यात यात राक्षस निशाचर विभु महान ईश्वर। इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया जिसका एक भाग काला है। उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलमा का कलेजा पसीज गया यानी दया उत्पन्न होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा यानी ध्यान तक नहीं देना। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुड़े थे जैसा नाम वैसे ही गुड़। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा विनती करना। काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती। थाली बैठना, सब जवाब दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1,000 रुपये ठग लिए। झूठा आश्वासन। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्के बक्के हो गए। अचरज में पड़ना, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। दिल लगी करना, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भों भों करने लग जाते हैं। क्रोध में भड़क उठना, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो आंधी खोपड़ी है, निपट मूर्ख। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद्यांश। अस्ताचल रवि जल छल छल छवि, स्तब्ध विश्व कवि सीवन उन्मन, पवन मंद पवन बहते सुधीर हर परिमल की यह कथा पुरातन, दूर नदी पर नौका सुंदर दिखित मृदुतर बहती जीव सर, महाश्रेय की प्रतनु देह की बिना गेह की बैठी नूतन, ऊपर शोभित मेघ सत्रसित नीचे अमित नील जल दोलित, ध्यान नयन मन चिंत प्राण धन किया शेष रवने अर्षण। इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है दिवस का अवसान। इस कविता में छावादी कवि निराला ने मादक भावनाओं के व्यक्त की। इस पद्यांश से प्रयोग किया गया शब्द प्रतनु शब्द अर्थ रखता है छींड। पंडित निराला हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार थे। प्रयुक्त पद में प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है घर। निम्न पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज क्यों तेरी बीड़ा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी घुल जाता डर, मधुर कसक जा आज हृदय में आन समाया कौन, झुकती आते पलके पलके निश्चल, चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता पारा वार त्रिको में भर लाया कौन, आज क्यों तेरी बीड़ा मौन। इस कविता के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। निर्जा से उद्धृत इस कविता का आशय है, दुखों से आपूरित हृदय तथा नेत्रों के अश्रुमय होने के बावजूद वीणा मौन क्यों है। इस कविता का प्रयुक्त शीर्षक होगा आज क्यों तेरी वीणा मौन। कवित्री के बारे में निर्वाद सत्य है कि वह सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री हैं। भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे चार शब्द अंकित हैं, इनमें से एक शब्द दिए हुए समानार्थी है, सही समानार्थी शब्द चुनिए। कमल पारिजात, कलानिधि हिमांशु, तुंग उन्नत, शिख मयूर, मिलिंद भ्रमर। इन प्रश्नों में से प्रत्येक में शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे चार विकल्प दिए गए, एक दिए गए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, सही विकल्प चुनिए। जिससे किसी से लगाव न हो, निर्लिप्त, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती, सबके समान अधिकार पर विश्वास, समाजवाद, रजोगुण वाला, राजसिक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता के अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने झगड़ने से, खून बहाने से, तो तलवार के चलाने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर को जाना वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंत प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक रौनक एक बाहर संसार में छाया। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कमा, जीवन के अरण्य में निवास करो और सत्य के चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तह में पहुंचे तो नए रंग खिलेंगे। इन्वर्टेड कमापन, यही वीरता का संदेश है। इस गद्यांश के लिए प्रयुक्त शीर्षक सच्ची वीरता। वीरता का संदेश क्या है? उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। वीरों के देवदार वृक्ष से तुलना की, क्योंकि दोनों स्वयं पैदा होते और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जिनमें किसी कौन सा रूप वीरत्व का नहीं है? क्रोध। वीरता का एक विशेष लक्षण है नयापन। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया जिसके नीचे चार शब्द अंकित थे, इनमें से एक दिए गए शब्द का विलोमार्थी शब्द है, सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। दिवस विभावरी, निर्मल मलिन, उद्यम आलस्य, महान क्षुद्र, द्युति अंधकार। इन प्रश्नों में स्वर्या माता के दृष्टि से शब्दों का शुद्ध रूप में लिखा गया, नीचे दिए गए चार विकल्प में शुद्ध शब्द चुनिए। निर्लिप्त, इच्छाद्रुम, द्विरुक्ति, विस्मृति, जगत प्राण, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है? युग्म सही है, खरगोश विदेशी है। पुष्प शब्द है तत्सम, उर्दू हिंदी की एक कोई संबंध नहीं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? गुजरी पहाड़ी। निम्नलिखित में किस हिंदी की भाषा है? राजस्थान। होनहार वीरवान के होते चिकने पात का अर्थ है? महत्ता के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। जहर का घोट पीना का अर्थ है क्रोध करना। विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म चुने, गरल यानी सुधा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? खग। निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुने, मोहन ने एक पेड़ काटा। निम्नांकित युग्मों से सही विकल्प चुने, थकान स्त्रीलिंग। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? कनिष्ठ। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? उ विपरीत इन्वर्टेड कमा। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक डाला है, यह निम्नलिखित समीक्षाओं में किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। महाकवि भूषण निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य के लिए विख्यात है? वीर भावात्मक काव्य। द्विवेदी योग किसके नाम पर रखा गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, नारी के प्रति आकर्षण, प्रकृति के प्रति नूतन दृष्टिकोण और सांस्कृतिक भावना, ये विशेषताएं इनमें से किसके युग से संबद्ध है? छायावाद। प्रयोगवादी कविता के पुरोधा कौन है? अज्ञेय जी। हिंदी में प्रगतिवादी काव्य की शुरुआत कब से माने गए? 1936 से। हिंदी गद्य साहित्य में निबंधों की शुरुआत इनमें से किस युग में माने? भारतीय हिंदू युग। निषाद बांसुरी और विषाद योग निम्नलिखित से किससे किसके निबंध संग्रह? कबीरनाथ राय। नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी। इन्वर्टेड कॉमा। जिसकी रज में लेट लूट लूट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है रोला। इस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, उसे कहते हैं बरवय। जिस रचना के विभिन्न शब्दों में किसी प्रकार की विचारधारा या का कथाधारा या श्रृंखला न पाई जाए और प्रत्येक छंद स्वतः पूर्ण और निरपेक्ष हो, उसे कहते हैं मुक्तक। आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा की खोज करते हुए ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। तद्दोष और शब्दार्थ और सगुणावरण अलंकर पुनः क्वापि काव्य का यह लक्षण बताने वाले आचार्य हैं मम्मट। हिंदी साहित्य के प्रथम युग का सर्वाधिक उपयुक्त नाम निर्दिष्ट होता है वीर कथाकाल। पद्मावत अखरावट आखिरी कलामलिखित कवियों में किसके द्वारा रचित है? जायसी। गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रजभाषा और अवधि में रचना की। राम काव्य परंपरा में प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। कारकों का सही क्रम कौन सा? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। जो टाल मलोल या विलंब से काम करने के लिए